ओम शांति। सेवा समाचार तो आपको सुनाएंगे ही, लेकिन योग में बैठ के विचार आया कि हम सब सेवा करते हैं, जैसे खाना बांटना, सब्जियां काटना या और भी कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सेवा से भाग्य बनता है, त्याग से भी भाग्य बनता है। तो मन में कौन से विचार चलें कर्म करते हुए कि हमारा भाग्य बनता चले, तो वैसे भाग्य किसको कहा जाता है? डॉक्टर जी आप बताओ, भाग्य का मतलब क्या है? हाँ, मतलब भाग्य में खुशी शब्द आता है ना, खुश नसीब, जिनके नसीब में खुशी है। कई लोगों के पास धन दौलत है लेकिन नहीं है खुशी। हमने देखा है जापान जैसे देश में भी लड़ रहे हैं आपस में नहीं लोग, और खुशी नहीं है। क्यों? कारण कि सत्कर्म नहीं है ना, कर्म भी तो अच्छा चाहिए ना। तो जैसे हम कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं, सेवा, तो हम तो कर्म नहीं कहते, सेवा कहते हैं। वैसे तो शब्द सेवा कितना अच्छा है, सेवा कर रहे हैं हम, सेवाधारी हैं हम। सेवा करते अपने मन में क्या विचार लाते हैं, हमको चाहिए वो नहीं, कोई डिजायर्स नहीं, हम डिजायर से दूर हैं, तो वो सच्ची सेवा कही जाती है। जैसे शिव बाबा है, इतनी सेवा करना, इतनी दुनिया को बदलना, इतने सालों साल मुरली देना है, और इतने सेंटर स्थापन कराना, सूक्ष्म रूप से टचिंग करना, किसी को ड्रीम में जाकर के ज्ञान देना, मतलब हम लोग तो नहीं सोच सकते बाबा क्या कराते हैं। 99% वर्क तो बाबा ही करा रहे हैं। आप तो सहमत हैं इस बात से? 99% कौन कर रहा है सेवा, और हम कितने प्रतिशत करते हैं? एक। फिर भी आ जाता है विचार कि किसी ने थैंक यू नहीं बोला, किसी ने चाय नहीं पिलाई, किसी ने टोली नहीं खिलाई। मैं एक बार अहमदाबाद में थी, एक दादी एक भाई को मिली, उसका चेहरा इतना खुश नहीं था। दादी ने कहा क्या किया? कहते सारी रात मैंने सेवा की। क्या सेवा की? चौकीदारी की, है ना, सिक्योरिटी की। तो दादी ने कहा सेवा की? हाँ मैंने सेवा की। तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं चमक रहा है? दादी ने कहा सेवा का मतलब है दो बातें, कौन सी? खुशी, और दूसरा प्रत्यक्ष फल कौन सा है? खुशी और शक्ति। शक्ति तो आपके चेहरे में खुशी और शक्ति नजर नहीं आ रही है, क्या कारण है? कहता पता नहीं। तो जाओ योग में बैठो और थोड़ा कारण ढूंढ के आओ, क्यों नहीं है वो खुशी शक्ति। तो वो गया योग किया, फिर वापस आया तो दादी को उसने कहा, दादी मेरे को एक इच्छा थी चाय पीने की, किसी ने चाय नहीं पूछा। समझ गए? हाँ, है तो छोटी सी इच्छा लेकिन जरूरी है ना वो भी। तो इच्छा तो आ गई ना बीच में, तो इच्छा हमको खुशी महसूस नहीं करने देती और ना ही शक्ति आती है अंदर। तो इसलिए बाबा कहते जो सेवा हम करें वो निष्पक्ष, कोई भी इच्छा ना हो। इसलिए सेवा करने से पहले मन में हम ढूंढ लें कोई इच्छा तो नहीं है। इच्छाएं भी बहुत होती हैं, नाम मान शान की इच्छा, रिकॉग्नाइज करें लोग हमको, अप्रिशिएट करें लोग हमको, समझें हम क्या चीज हैं, अंदर होता है ये सब, है ना। कोई कोई पूछे हमको, मैं छोटी सी थी जब मैं गई थी, हम लोग छोटे छोटे थे ना, स्किट करते थे, ड्रामा जगदीश भाई साहब हम लोगों को सिखाते थे, तो हम लोग जाते थे कमला नगर, तो दादी गुलजार वहां होती थी, तो हम छोटे छोटे थे 12 साल 11 साल के, तो हम लोग ड्रामा का रिहर्सल सारा दिन करते थे। फिर हम लोग कहते थे दादी अच्छा मैं जा रही हूँ। अच्छा जा रहे हो? तो एक बार दादी गुलजार ने टोली नहीं खिलाई मुझे, तो मैंने कहा दादी मैं जाती हूँ। अच्छा जाओ। मेरे दिल में कब तक रहा कि दादी ने टोली नहीं खिलाई। तो वो इच्छा होती है ना बच्चों को, है ना, कि टोली मिलेगी, दादी को हमने बोला। तो ये इच्छा मैंने दादी को एक बार सुनाया, मैंने कहा दादी आपको याद है आपने टोली नहीं खिलाई थी? मैं बहुत छोटी थी, मैंने ड्रामा खत्म किया, स्किट रिहर्सल की। हाँ अच्छा अभी डबल खा लो। मतलब उस समय बच्चे होते हैं ना, तो कोई भी प्रकार की इच्छा हमको खुशी प्रदान नहीं करती है। तो इसलिए जो बाबा ने ये शब्द दिया है ना, सेवा, सेवाधारी, ये शब्द बहुत अच्छा है। तो सेवा करते करते किसी के साथ हिसाब किताब भी ना बने। हिसाब किताब बन जाता है ना कई बार कर्मों का, तू तू मैं भी हो सकती है ना। कोई किसी ने ठीक नहीं किया हो मान लो, हैं, तो दूसरा व्यक्ति आके उसको डांट दे, तूने ये सेवा ठीक नहीं की, हैं, उससे हम घबरा जाएं और स्वमान में हम ना रहें तो हम भी कुछ बोल दें उसको, तो अकाउंट बन जाता है ना। तो सेवा में कर्म का हिसाब भी बन सकता है और भाग्य भी बन सकता है। भाग्य बनता है इच्छा हम नहीं रखते हैं। यदि हमारा कर्म का किसी के साथ हिसाब बनता है, कोई भी कुछ बोल दे हमको और हमारा मन हलचल में आ गया और हमारा मन जो है दुखी होने लगा, दुख के विचार आ गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, मन की हिसाब किताब है, तो उससे खुशी गायब हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने हमको कौन सा लेसन दिया है ताकि हम सेवा में रहते हुए भी, एक दूसरे के सामने आते हुए भी हम अपना भाग्य बनाते चलें, लेकिन कर्मों के टकराव में नहीं आए, हिसाब किताब में नहीं आए। तो उसके लिए बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने एक लेसन है जो दादी जानकी ने हमको सुनाया था कि बहुत यूज किया है ब्रह्मा बाबा ने उस लेसन को। कौन सा? ड्रामा का। हाँ, ड्रामा का जो लेसन है बाबा ने बहुत यूज किया। बहुत लोगों ने क्या क्या बोला, बाबा ड्रामा में स्थिर रहे और आगे बढ़ गए। कभी जब कहानी सुनो ब्रह्मा बाबा की, कैसे कैसे बड़े बड़े टेस्ट आए उनके सामने। हमारे पास तो इतने नहीं आते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के पास तो क्या नहीं आया। तो वो बहुत बड़े टेस्ट में भी ब्रह्मा बाबा आगे क्यों बढ़े, उसका कारण था ड्रामा में स्थिर रहना। कोई भी बात हो जाती थी, बाबा कहता बच्चे ड्रामा, मतलब आगे सोचो ही नहीं उसको, इतना कंट्रोल, इतना कमांड है अपने थॉट्स पर, अपने वर्ड्स पर, अपने विचारों को भी कंट्रोल में रखना, शब्दों को भी कंट्रोल में रखना, इतनी पावर चाहिए है। तो वो बाबा ने ड्रामा के लेसन से ली। तो हम लोगों को भी सारा दिन काम करते हुए भी एक तो भाग्य याद रखना है कि मेरा भाग्य बनता चले, अर्थात शाम को चेक करना है कितनी खुशी बढ़ी। तो खुशी बढ़े उसका आधार है खुशी के विचार। कुछ भी हो जाए, मेरे मन का जो संकल्प है वो हलचल में ना आए, तो खुशी में हम रहेंगे। और दूसरा, हम ये ध्यान देते हैं कि किसी के साथ मेरा हिसाब किताब ना बने, क्योंकि वहीं खुशी गायब हो जाती है। और पता नहीं चलता, माया किसी तरह से भी आ सकती है ना। थोड़ा सा भी हम लापरवाह हुए तो माया आ गई। लापरवाह और लेजी है ना, ये दोनों कारण है बाबा कहते हैं माया के आने के। माया तो ओवरवेलमिंग है, माया के तो करोड़ों रूप हैं, किसी भी रूप से आकर के आपको हलचल में ला सकती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये ध्यान रखो, सावधानी। एक बार मैंने गुलजार दादी से प्रश्न पूछा था, दादी आप सोचते हैं बाबा मेरे में आता है? कहती नहीं 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 नहीं, मैं नहीं सोचती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहती ऐसे सोचेंगे तो बाबा आएगा ही नहीं क्योंकि वो हो जाता है ना, मैं आ जा गया ना मेरे में। तो मैंने कहा दादी फिर आप क्या ध्यान रखते हो? कहा मैं तो सब सावधानियां रखती हूँ, बहुत सावधानियां रखती हूँ। कौन कौन सी? मैं मुरली से लेती हूँ, किसी का पक्ष नहीं लेना, फेवरिज्म नहीं करना। हम कर देते हैं ना फेवर, कोई काम अच्छा कर दिया उसको कुछ हम फेवर कर देते हैं, फेवर समझते हैं उसके पक्ष में। तो दादी कहती हम तो बहुत ध्यान रखते हैं, एकदम सावधानी, कम बोलना, कम सोचना, कम इंटरेक्शन में आना, शांति में रहना, क्योंकि बहुत हम तो ध्यान रखते हैं अपनी शब्दों पर, अपने मन पर। तो हम लोग कभी कभी हम उनसे पूछते रहते हैं, दादी आप बताओ वर्तमान समय हम क्या पुरुषार्थ करें। एक बहुत अच्छी बात बताई रिसेंटली, दादी को पूछा गया पिछले महीने, दादी बाबा का ग्लोरिफिकेशन कब होगा, प्रत्यक्षता। दादी ने पता क्या बोला? जब सब राजयोगी, बीके भाई बहन, ब्रह्मा कुमार कुमारी, सभी योग में पक्के हो जाएंगे। तो मतलब पक्के का मतलब क्या दादी? झुटका नहीं खाएंगे, योग में बैठ के जब झुटका खाते हैं तो इसका मतलब योग में कमी है। तो जब कहती सब भी कि मन की स्थिति एक जागृत हो जाएगी, अवेक जिसको हम कहते हैं, अलर्ट कहती है, अलर्ट और जागृत हो जाएंगे, झुटका नहीं खाएंगे तो समझो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो कहा कि अभी तो योग की कमी है। हाँ, झुटका खाते हैं ना, कितना झुटका खाते हैं हम लोग, कभी अमृत वेले में थका हुआ होता है शरीर तो झुटका ही तो आएगा है ना, और मन इधर उधर चला जाएगा। कहा अभी तो बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए वैसी स्थिति चाहिए कि लोग समझें कि ये वाइब्रेशन हमारा मन जो है प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे शिव बाबा के वाइब्रेशन है ना शांति के, शिव बाबा के वाइब्रेशन है शक्ति के, बाबा सर्वशक्तिवान है, बाबा ज्ञान का सागर है ज्ञान के, बाबा प्रेम का सागर है प्रेम के, बाबा दया का सागर है दया के, आनंद का, ये वो वाइब्रेशन बाबा के आते हैं ना योग में बैठते हैं तो हमारा मन भी वैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करे, प्रकंपन बना सके, उसको योग कहा जाता है ना। यदि फालतू विचार आते हैं तो उसको योग थोड़ी कहेंगे, आनंद के विचार आप पैदा करो और उससे वाइब्रेशन फैलाओ, किरणें फैलाओ, प्रकंपन फैलाओ, उसको कहेंगे योग के वाइब्रेशन। तो इसलिए जब वो वाली स्थिति दादी कहती आ जाएगी अलर्ट वाली, तब समझेंगे बाबा की प्रत्यक्षता। बात तो ठीक कर रही है ना दादी, झुटका खा रहे हैं तो लोग कहेंगे तो सुस्ती, सुस्ती के वाइब्रेशन आ रहे हैं, शिव बाबा तो सुस्त है नहीं शिव बाबा तो सदा जागती ज्योत है, हमेशा भी 24 घंटे में कोई भी मिनट आप चले जाओ शिव बाबा के पास परम धाम में, कभी बाबा सोया हुआ है क्या है? बाबा तो हर समय 24 घंटे उसके वाइब्रेशंस जो हैं सारा टाइम फैल रहे हैं। तो जैसे हम बस कनेक्ट करते हैं एकदम मन स्थिर हो जाता है, उसको योग कहते हैं। मन स्थिर हो गया एकदम बाबा के वाइब्रेशन में एब्जॉर्ब हो गया तो वो कंसंट्रेशन आ गई तो योग तो कहा जाएगा ना उसको, इतना मन ऊंची स्थिति में जा सकता है। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास करो सारा दिन कि मुझे अपने मन में कौन से विचार लाने हैं, सेवा करते समय खुशी के, और जब हम योग में बैठे तो झुटका नहीं खाना है, अलर्ट और अवेक, अलर्ट और जागृत, जागृत रहना है। तो झुटका आ गया तो डिस्कनेक्शन है ना बाबा से, उस समय बाबा को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, डिस्कनेक्ट हो गया ना हमारा मन, कहीं चला गया पास्ट की बात में। और इतना कई एक बार तो किसने हमको सुनाया था, यदि हम योग में सोए रहते हैं तो वो कैसे, किसी ने कहा कि वो जो पुराने हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा ना किसी इन लॉज के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, पत्नी किसके साथ, ऐसा हिसाब किताब वो मेमोरी में मन चला जाएगा, इतनी कर्मों का हिसाब किताब डीप है कि वो आपको यहां से डिस्कनेक्ट कर देगा और कहां ले जाएगा, पास्ट में। तो इसीलिए हम लोगों को नींद से तो जरूर बचना है, मतलब लास्ट गीता का चैप्टर लास्ट में अर्जुन ने यही तो सारी आप पढ़ो तो यही कहा ना कि नींद भी कितने प्रकार की होती है, तीन याद है, सत्व प्रधान, रजो और तमो किसको कहते हैं, अलार्म बजता रहे फिर भी हम ना उठें, तमो। फिर रज्जो, रज्जो में दो प्रकार के, अच्छा 5 मिनट के बाद उठ जाऊंगा पुरुषार्थ तो है लेकिन थोड़ी देर के बाद। फिर सत्व प्रधान एकदम, वो स्पिरिट है ना, वो स्पिरिट से उठ गए हम, उमंग से उठ गए, उत्साह से उठ गए, उसमें मेहनत नहीं होगी। रज्जो में मेहनत तो है 5 मिनट के बाद, घोड़ेसवार घुड़सवार हो गए ना, जंप देंगे लेकिन 5 मिनट के बाद, होता है ना कभी कभी मन में आता है विचार है ना, अभी 3:30 हुआ अभी तो रिकॉर्ड बजाए, अभी 10 मिनट के बाद उठेंगे, ये स्ट्रगल चलती है ना मन में, तो वो रज्जो हो गई। और सत्व प्रधान वो वाले विचार नहीं होंगे, उठना है नहीं उठना है, 5 मिनट के बाद कुछ नहीं, ये वाले विचार आ ही नहीं रहे, आप एकदम उठ गए तो वो सत्व प्रधान हो गया। और तमो, एक्चुअली तमो तो उठता ही नहीं है वैसे देखा जाए, क्योंकि वो सुस्ती उसको इतना माइंड को पता नहीं कहाँ ले जाएगी, कौन सी मेमोरी में वो नींद में कोई कौन से स्वप्न देख रही है आत्मा, पता ही नहीं चल रहा कि उसको 4 बज गया 3:30 बज गया। मतलब वो मेमोरी जो पास्ट की होगी ना नींद में, वो उसमें ही उसका चला जाएगा ना, एकदम एब्जॉर्ब है ना उसमें, तो उठ ही नहीं पाएगा। कहते हैं ना जब नींद करते हैं तो हमारे बुद्धि उस समय अलर्ट नहीं रहती है ना, इस समय हम अलर्ट हैं, तो जब हम सो जाते हैं तो खुली किताब कहते हैं उसको, माना सारे संस्कार ओपन हो जाते हैं 63 जन्मों के। तो कभी हम बाइसिकल में बैठे हैं, कभी स्कूटर में बैठे, कभी पहाड़ पे चढ़े, होता है ना ऐसे, कभी समुद्र पर बैठे हैं, होता है ना, वो सारे संस्कार की किताब खुली होती है। तो उस समय कौन सा विचार करना है नहीं करना है, डिसर्नमेंट पावर नहीं होती है ना, मतलब दिव्य ज्ञान बुद्धि जो हमको बाबा देता है उस ज्ञान से हम परख सकते हैं बात को, वो परख नहीं सकते। उस समय बुद्धि नहीं काम कर रही होती है, खाली संस्कार ही ओपन होते हैं, मेमोरीज। तो इसलिए नींद के टाइम खुली किताब, तो इसलिए अलार्म लगाना पड़ता है थोड़ा मदद लेने के लिए। यदि हमारी सत्व प्रधान नींद है तो अलार्म नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो आपका जो ना सूक्ष्म पावर है, आत्मिक शक्ति, वो आपसे काम करा देगी, है ना। इसमें थोड़ा फिजिकल हम मदद लेते हैं, तो इसलिए वो उससे फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। रात को सोते समय प्रोग्राम देना है माइंड को कि सुबह जल्दी उठना है, बाबा को याद करना है, पोता मेल आज का दे दिया बाबा को, सारा दिन खत्म हो गया, ठीक हो गया, किसी को दुख नहीं दिया, मेरे व्यर्थ विचार नहीं चले, बताना पड़ेगा ना बाबा को, क्लियर 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 करना पड़ेगा। यदि ऐसे ही सो गए, टीवी देखते, इंटरनेट देखते, कुछ करते, वो फिर इतने वाइब्रेशंस के हैवी होते हैं कि वो आपको अवेक जागृत नहीं करने देंगे, क्योंकि वो सूक्ष्म है ना माइंड, क्योंकि माइंड की शक्ति भी एक सूक्ष्म शक्ति है ना, और ये वाली जो 5 तत्वों की शक्तियां हैं ये भी। तो एक बार हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, एक भाई है टीचर, उसने बहुत अच्छी बात बताई। उसने कहा कि जब भी आप टीवी के इंटरनेट के सामने बैठो, कंप्यूटर, कहते आप प्लान कर लो कि मुझे आधा घंटा बैठना है या 1 घंटा बैठना है, उससे ज्यादा नहीं बैठना है। कहते यदि आप नहीं करेंगे प्लान, आपको वो इतनी 5 तत्वों की जो वो शक्ति इतनी अट्रैक्टिव है कि आप घंटों घंटों बैठे रहेंगे। अच्छा आप देखना अपने मन में, कहते आप बैठे थे काम करने के लिए कि ये काम खत्म करना है फिर उठ जाना है, फिर आप देखना आपके माइंड में आएगा चलो ये भी देख ले, चलो वो भी देख ले, है ना। वो जो 5 तत्वों की, 5 तत्व की रिफाइंड शक्ति है ना इंटरनेट वगैरह, ये 5 तत्व ही तो है और क्या है, है ना। तो बहुत रिफाइंड चीज है ये, तो वो रिफाइंड शक्ति आपको अट्रैक्ट कर देगी माइंड को। तो वो अट्रैक्ट करते प्रत्येक कहां कहां कितने घंटे हो जाते हैं, कई लोग बैठे रहते हैं। अच्छा बैठे तो काम से थे कि 1 घंटा काम करके, क्योंकि काम होता है ना, किसी को कुछ भेजना है, करना है, पढ़ना है, आर्टिकल बनाना है, कुछ जो काम करते हैं लोग, सारा बिजनेस करना है। लेकिन उसके बाद क्या किया, हाँ वो जो 5 तत्व हैं वो इतनी सूक्ष्म पावर है कि आपके माइंड को अट्रैक्ट कर सकती है। और आप फिर कहेंगे कितने घंटे हो गए, बाप रे मेरा काम तो खत्म हो गया, मैं क्या कर रहा हूं एक बहन थी वो रात के 12 बजे बैठी रही और वहीं सो गई, मतलब इतना अट्रैक्शन कि बैठे बैठे सो रही। तो सुबह 4 बजे कुछ लोग आए, सेंटर खोला, ओके, तो वही सो रही है, वो इतना अट्रैक्शन है कि इतना काम तो इतना थोड़ी होगा 12 बजे तक, लेकिन वो जो 5 तत्व हैं वो हमारे माइंड को हाँ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि 5 तत्व आकर्षण मुहूर्त होते हैं ना। आप देखो ना ये शरीर, ये सारी चीजें इस दुनिया में है तो ओवरवेलमिंग, 5 तत्वों की कमाल तो है, लेकिन इससे ऊपर आत्मिक शक्ति है जिसने इनको यूज किया, उसको शेप दी, उसको बनाया है। तो सोल पावर ना, सोल पावर नहीं है तो कहां डिजाइन कर सकते हम कोई भी चीज का, नहीं, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। तो वो आकर्षण जो है हमारे स्पिरिचुअल पावर को खत्म कर देता है, आइडेंटिटी को ही खत्म कर देता है, मतलब इतनी पावरफुल चीज है 5 तत्व भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या प्रैक्टिस करो सारा दिन, सोल कॉन्शियस। मैंने एक बार दादी से पूछा था, गुलजार दादी से, आप कैसे करते हो, दादी कहती हम तो नहीं सोचते मैं आत्मा हूं। मैंने कहा फिर को तो हमें हमारे नेचर में है, मैं मालिक हूं। मालिक समझते हो, मैं आत्मा नहीं, मैं मालिक हूं। समझा इसमें अंतर क्या? मैं आत्मा हूं तो बहुत ऑर्डिनरी संकल्प है, लेकिन मैं मालिक हूं, मतलब मालिक हूं इसकी, आंखों की, हाथ की, मुख की, कितना बोलना है नहीं बोलना उसकी मैं मालिक हूं, सुनना क्या है नहीं सुनना है उसकी मैं मालिक हूं, क्या देखना है क्या नहीं देखना है उसकी मालिक हूं। तो दादी ने कहा ये शब्द याद रखो, मैं कौन हूं? मैं मालिक हूं। मैंने कहा आप नहीं सोचते मैं आत्मा हूं? नो 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 खेती, कभी नहीं, हम मालिक हैं, मैं आत्मा मालिक हूं, ये कर्म इंद्रियों की। हाँ, तो आप सारा दिन आप कर रहे हैं काम, मैं मालिक आत्मा हूं, मैं मालिक हूं, मास्टर हूं। बाबा कहते हैं ना मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मालिक हूं। तो ये आप चीजें याद रखना, कर्म करते हुए सेवा में भाग्य बनता है खुशी के संकल्प। यदि कर्म का हिसाब किताब आ गया तो अकाउंट। दूसरा, अमृत वेला कैसा हो? बिना झुटके के। आप कल देखना, ट्राई करना, आया थोड़ा सा झुटका मींस, हाँ उस समय हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर रहे, मन कहीं चला गया है मेमोरी में। और तीसरा ये याद रखना है सारा दिन, मैं मालिक हूं। तो ये कुछ बातें मैंने ज्ञान की सुनाई, अभी मैं आपको 10 मिनट वो सुनाऊंगी थोड़ा समाचार। हम लोग तो, मैं तो वैसे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में रहती हूं, क्योंकि हम लोगों का बहुत थोड़े से है ना हम इंडियन टीचर्स, तो इसलिए ट्रैवलिंग में रहना पड़ता है। दादी ने कहा आप लोग अपने को फ्री रखो, जहां सेवा है वहां जाओ। तो अभी हम लोग जापान जैसे देश में, हिरोशिमा और टोक्यो और कोबे, वहां पर बहने हैं, भाई हैं, वो लोग सेवा करते हैं और हम लोग उनको मदद करते हैं, है ना। जैसे अभी चार्ली भाई आने वाला था, वो नहीं आ पाया, तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस था। तो एक बहन है जापानीज, वो हांगकांग में रहती है, तो उसने चाइनीज से शादी की हुई है, वो भी म्यूजिशियन है। तो वो 4 साल की थी तो वो बजाती है वायलिन, तो वो इतना अच्छा बजाती है। तो उसने क्या किया कि 7 साल पहले सुदेश बहन गई थी हांगकांग, तो उसने योग कराया था, तो उसको कुछ अवेकनिंग हुई दृष्टि से। तो उसने कहा कि क्या हो रहा है मेरे को, उसने कहा इसको अवेकनिंग कहते हैं, अवेकनिंग समझते हैं ना, जागृत हो गए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसके जो ज्ञान है, शिव बाबा का जो ज्ञान है, ये अवेकनिंग कराता है, कन्वर्ट नहीं कराता ना, अवेकनिंग कराता है। तो उसने कहा ये मेरे को सीखना है, तो वो ज्ञान में आ गई, तो बीके बन गई। तो उसने अब ये जो बजाती है वायलिनस, वो उसने 3 चीजों पर कंपोज किया म्यूजिक। एक अवेकनिंग जो उसको हुई, उस सेम चीज उसने म्यूजिक के रूप में क्रिएट किया, कितना अच्छा काम किया। दूसरा, हम जब योग में बैठते हैं, गोइंग होम, गोइंग होम निर्वाण धाम, उसके उसका म्यूजिक बनाया। और तीसरा, रिमेम्बरेंस, हम बाबा को याद करते हैं। तो फिर 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस था, तो उसने इतना अच्छा उसी दृष्टि से वो वाइब्रेशन होल्ड करके सोल कॉन्शियस होके वो म्यूजिक बजाया। तो क्या है कि उन देशों में ये नहीं कह सकते शिव बाबा, ये कुछ नहीं बोल सकते ना, क्योंकि गॉड को नहीं मानते हैं ना लोग वहां, लेकिन वो वाइब्रेशंस देने होते हैं लोगों को। तो उसने बोला नहीं, लेकिन म्यूजिक से, शांति से उनके अंदर इतना अनुभव करा दिया अवेकनिंग का, कि कई लोगों के आंखों में आंसू आने लगे, वो सब आए। मैंने आधा घंटा योग कराया था, उसने आधा घंटा म्यूजिक, तो वो लोग आए, कहते हैं हमको तो आज पता चलता है भगवान के वाइब्रेशंस क्या होते हैं। हाँ, कहना नहीं है ना वहां भगवान, वो अपने आप अनुभव करे, है ना। तो ये वहां पर साइलेंस से करते हैं काम, जितना लोग साइलेंस में जाकर आप म्यूजिक के द्वारा, अपने मन के द्वारा वो वाइब्रेशन पैदा कर दो और लोगों को महसूस होने शुरू हो जाएं, तो वो समझेंगे, इसको कहेंगे योग। रियल चीज, प्रैक्टिकल अनुभव होनी चाहिए। तो ये विशेष हमने देखा, तो मैंने कहा इतने लोगों को अच्छा लग रहा है तो हम चलो अगले साल बड़ा कर लें। अभी तो 100 लोग आए थे उस दिन, छोटा हॉल मिला था, अभी हमने 1200 का कर दिया अगले साल, वो भी उस दिन जिस दिन हिरोशिमा में बॉम्ब पड़ा था। हमने कहा उस दिन की यादगार में चलो करो, शांति का आनंद दो लोगों को। तो वो बहन तैयार कर रही है म्यूजिक, तो वो लोग म्यूजिक तैयार करते हैं अपने अनुभव के आधार से, लेकिन योगी हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो वाली कॉन्शियसनेस ना, वो स्मृति में रह करके वो दृष्टि, वो बाबा वाले वाइब्रेशन दृष्टि से भी अट्रैक्ट नहीं किया दूसरों को अपनी तरफ, लेकिन वो वाइब्रेशंस दिए दृष्टि द्वारा, म्यूजिक द्वारा, इतना अच्छा लगा लोगों को। तो इस ढंग से एक सेवा है, साइलेंस म्यूजिक। और दूसरी एक सेवा हम लोग कर रहे हैं, जैसे ये होते हैं ना हॉस्पिटल, तो वहां पर कई होते हैं ये कैंसर पेशेंट, कई होते हैं कुछ और पेशेंट, डॉक्टर्स नर्सेज, तो हफ्ते में एक बार, महीने में दो बार जाना होता है, खाली बहुत सटल ढंग से वैल्यूज पर बताने के लिए मेडिटेशन। परंतु 6 साल हो गए, आप देखो अभी तक हमने उनको कोर्स नहीं कराया। हाँ, कह नहीं सकते ना, वहां पर प्रोपोगंडा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कोई भी धर्म अपना प्रोपोगंडा, समझते हैं, हाँ वो नहीं कर सकते, अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, प्रिंट नहीं कर सकते, सब मना है उस देश में। आप कर्म ही पूजा है, कर्म द्वारा ही बताओ, कुछ कर्म करके दिखाओ। तो इसलिए वहां पर वो प्रिंट नहीं करना, 7 दिन का कोर्स नहीं दे सकते हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने वाइब्रेशंस, एटीट्यूड, वृत्ति और अपने अंदर की जो हमारी अंदर की वाइब्रेशन है वो आप महसूस करा दो लोगों को, तो अपने आप उनको टच होगा। ये बहुत सूक्ष्म अंदर की सेवा है वहां। और तीसरा जो है, वहां पर जो लोग ज्यादातर अभी आ रहे हैं, अभी पीस ऑफ माइंड में यंग लोग आ रहे हैं, क्योंकि इस बार यंग लोगों की सेवा चालू की है। एक बहन मिल गई, वो कहती है कि मैं समझ गई हूं अभी ब्रह्मा कुमारी इसका मिशन क्या है, तो उसको पसंद आ गया, तो वो 6 लोगों को भी लेके आ रही है पीस ऑफ माइंड में। तो वो हमारी स्पीकर थी एक प्रोग्राम में, इंडियन एम्बेसी वहां प्रोग्राम किया था, इंडियन एम्बेसडर अच्छी तरह जानता है ब्रह्मा कुमारी को, तो उसने कहा आप लोग करो एम्बेसी में प्रोग्राम, हॉल दे देते हैं वो लोग। तो फिर हम लोग करते हैं वहां जापानीज लोगों के लिए। तो एक लीडर है, उसने किताब लिखी है, बहुत यंग लोग उसको फॉलो करते हैं, तो उसको उसने कहा कि मैं 20 लोगों को तैयार करना चाहती हूं जापान में, जो अच्छे नहीं जैसे लीडर टाइप हो, तो उसमें से 6 को लेके आ रही है अभी पीस ऑफ माइंड में। तो ये यंग लोग आ रहे हैं, मतलब यंग लोगों में अवेकनिंग आ जाए तो अपने, क्योंकि जैसे आज वो बता रहे थे इंडिया में 65 करोड़ यूथ है, हाँ मीन्स आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया, और जापान में सब ओल्ड है, क्योंकि वहां पर वो देना ही नहीं चाहते बर्थ बच्चों को, महंगा देश है तो वो कौन उनको संभाले। तो इसीलिए ना रोज हम तो देखते हैं सड़क पर बूढ़े ही लोग होते हैं क्योंकि नहीं देते ना लोग, नहीं करना चाहते। तो अभी उनको भी प्रॉब्लम तो होगी फ्यूचर, लेकिन जो भी यंग लोग हैं थोड़े से उनकी तो सेवा हो जाए। तो एक बहन आएगी पीस ऑफ माइंड में, कल उन्होंने लिखा मेरे को कि उसको बाबा का जो विजन है, मिशन है, समझ आ गया है कि क्या चीज है ये, तो वो उसको समझ आ गया है, तो इसलिए उस वो यूथ में फैलाना चाहते हैं अभी। यहाँ पीस ऑफ माइंड होगा ना ये 20 नवंबर से 26 नवंबर तक, 27 नवंबर तक ये रिट्रीट होता है, इसमें 7 दिन का कोर्स देते हैं, परंतु जो 7 दिन का कोर्स देते हैं सीधा सीधा नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे स्टाइलिश थोड़ा अप्रोच डिफरेंट है, ताकि इंटरनेशनल लोग हैं ना धर्म ना लगे या प्रीचिंग ना लगे कि कोई लेक्चर कर रहा है, ऐसे नहीं लगे। बहुत समझ से देना पड़ता है ताकि उनको पता चले ये चीज क्या है स्पिरिचुअल। तो वो सेना यहाँ पर हर साल करते हैं। तो फिर हम लोग विदेश से 200 लोगों को लेके आते हैं। हर देश को नंबर मिलता है, तो चार नंबर, खाली चार गेस्ट आ सकते हैं एक देश के। जैसे जापान से उन्होंने चार कहा तो हम 6 ला रहे हैं। कोई देश चार नहीं ला सकता, 3 ला सकता है, कोई 10 ला सकता है, नंबर दे देते हैं। तो उस हिसाब से 200 इकट्ठा हो जाता है। फिर हर साल करते हैं, लेकिन अच्छा है। उसके बाद कोई ब्राह्मण बन जाते हैं, कोई सेवा आगे बढ़ा लेते हैं, कोई कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन कई सालों के बाद उनको जागृति आती है। फिर कई सारे प्रोग्राम हो करते हैं, क्योंकि अनुभव तो किया हुआ होता है ना। बाबा कहते हैं ना, कुछ भी फ्री नहीं जाता है। जो भी सेवा आप करोगे उसका बीज पड़ गया तो कभी तो फल मिलेगा। अभी फिलीपींस में एक बहन कितने साल पहले आई थी, 12 साल पहले, अब जाके पिछले महीने उसने मेंटल हेल्थ की ना सेवा कर, 3 दिन रिट्रीट करो, क्योंकि खुद यहां करके गई। तो कभी तो रिजल्ट निकलता है ना, ऐसे थोड़ी कोई फालतू जाता है पीस ऑफ माइंड भी। बाबा का खाना खाया, ज्ञान सुना, वाइब्रेशन तो अनुभव किया, लेकिन वो बीज जो है कभी तो उभरेगा। तो इसलिए मैंने देखा कि कितने सालों के बाद भी लोग याद रखते हैं और सेवा लेना चाहते हैं। तो फिलीपींस जैसे देश में 3 प्रकार की सेवा चल रही है। एक है पुलिस, वहां पर पुलिस को ना, इंडिया में भी मालूम नहीं कैसा है इमेज, वहां पर पुलिस की इमेज अच्छी नहीं है, लेकिन आप उनकी बातें सुनो, पुलिस लोगों को कहां देती है गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी। बेचारे ऐसे कोई ऐसे टेंट में बैठे रहते हैं, कोई गाड़ी नहीं होती। बहुत लोगों को हमने देखा है, लोगों ने रिसर्च की है कुछ इतनी। वहां पर भी गरीब देश है, तो इस प्रकार से पुलिस करप्शन। तो फिर इन्होंने कहा कि हम लोग अपनी इमेज कैसे अच्छे बनाएं। तो 5-6 साल पहले मेरे को मन में आया कि हम लोग इनको बाबा का खाना खिलाएं और ज्ञान सुनाएं। तो मैंने कहा 100 पुलिस वालों को बुला लेते हैं सेंटर पर। हाँ 100। तो मैंने किसी इंडियंस को कहा कि हम स्पॉन्सर कर दो ब्रह्मा भोजन, अच्छा है ना काम ये। तो फिर क्या हुआ, 100 तैयार हो गए आने के लिए, अच्छी पोजीशन के लोग। तो मैंने कहा भी देखो गन नहीं लेके आना सेंटर पर, सभी अपनी बस में रख देना और अपनी सिंपल ड्रेस में आना, हमको वो भी नहीं चाहिए पुलिस की यूनिफॉर्म। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो एक बहन थी, वो पीस ऑफ माइंड में होके गई थी, तो उसने कहा ठीक है इनको शांति का अनुभव कराओ। तो वो लेके आए, सारा दिन रहे, हम उन लोगों को फूल दिया, एक एक वेलकम किया, फिर ज्ञान सुनाया। डेनिस बहन थी वहां पर, मैं थी, एक और बहन थी, तो बहुत अच्छे ढंग से उनको बाबा का ज्ञान सुनाया। तो उसके बाद वो लोग हमको कहते हैं हर महीने सुनाओ। तो फिर हम हर महीने कर रहे हैं उनके प्रोग्राम। तो उन्होंने 14 अगस्त को कहा ब्रह्मा कुमारी को हम अवार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सिखाई, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो उन्होंने अवार्ड दिया 14 अगस्त को, है ना, क्योंकि इतनी सेवा हो गई ना उनकी। और वहां का अंडर सेक्रेटरी था, उसने कहा महात्मा गांधी ने भी कहा था बी द वन व्हाट चेंज यू वांट टू सी, बी द वन हु इज चेंज। बहुत अच्छा बोला इंडिया के बारे में भी, इंडिया का नाम तो है ना महात्मा गांधी के नाम से। और फिर उन्होंने ब्रह्मा कुमारी का शिव बाबा का लोगो दिखाया, ब्रह्मा कुमारी। तो मैं गई थी हम लोग अवार्ड लेने। तो फिर उसके बाद वो एक और लेक्चर हुआ, तो वहां पर हम लोगों ने ये कहा कि देखो आज लोग जल्दी जल्दी वेपन निकाल लेते हैं मारने के लिए, परंतु कोई और भी तो तरीका है ना। वो कौन सा तरीका है जो हम अपनाएं जीवन में, कौन सा? हिंसा नहीं, एक दूसरे से बात करो, डायलॉग करो, हैं? एक दूसरे के ग्रुप बना करके कन्वर्सेशन करो, डायलॉग करो, एकदम मार देते हैं ना, लेकिन वो ना करके ये करें हैं? क्योंकि आजकल के समय में इसको कहते हैं विंटर ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब सबके दिल सूखे पड़े हैं। सूखा समझते हैं, विंटर कोल्ड हो गया है अंदर, सब कोई है ही नहीं प्यार। तो इसलिए यदि हम वो वाली दुनिया, विंटर के बाद स्प्रिंग आना है, यदि स्प्रिंग लाना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। वो तैयारी यही होगी कि हम ये एकदम वेपन नहीं उठाएं, लेकिन उनकी बात सुने। तो क्योंकि पुलिस का काम है कम्युनिटी सर्विस करना, समाज की सेवा करना, समाज की सेवा करो ना, लेकिन मारना नहीं है। तो वो लोग जो बैठे थे, हर महीने जाते हैं ना हम लोग उनके पास, तो उस दिन वो 50 लोग थे। तो एक बड़ा जो था आर्मी का बड़ा जनरल था, वो उसको रियली बहुत अच्छा विजन है कि ये पुलिस वाले अच्छी सेवा करें उस देश में। तो वो भी बैठा था, वो कहते हैं मैं तो हैरान हो गया हूं कि ये 50 लोग, सारा टाइम कोई भी स्पीकर आता था अपने ये टेलीफोन को लेके हैं, करते रहते हैं और सुनते नहीं थे, लेकिन आज क्या हो गया इनको, कोई भी अपना मोबाइल यूज नहीं कर रहा, ऐसे देख रहे हैं और कुछ चेंज आ गया उनमें। हाँ, तो उसको समझ आ गया कि हमको जो चेंज लाना है अपने में वो यही है कि हम अपने जो ह्यूमैनिटी है, मनुष्यता है, उसको हम प्यार से बात करें ना। कम्युनिटी सेवा है ना ये, तो समाज की कन्वर्सेशन करें ना। तो कहते हैं रो पड़ा वो, इमोशनल हो गया, कहते हैं आज समझ आ गया। तो उसका जो बेटा है ना, एक जगह वहां पर लड़ाई चल रही है मारने करने की, तो उसने कहते मैं आज अपने बेटे को कहने वाला हूं टेक्स्ट करके, स्टॉप कर दो मारना। एक तरीका मिल गया है हमको क्या करना है, बैठ के बात करो, डायलॉग करो, किसी का दिल सुने, सेवा है ना ये। ये तो क्या कर रहे हैं हम, कैसी दुनिया में पहुंच गए हैं। तो उसको इतना महसूस हुआ, टच हो गया। तो वो फिर हर महीने अभी हम लोग एक एक टॉपिक लेकर के उनको सेवा करते हैं। हालांकि वो आके रहते हैं ना, हमारा रिट्रीट सेंटर है ना, वहां 3 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, सारा दिन रहते हैं, लेकिन वो पे करते हैं अपने पुलिस की तरफ से, उनका बजट होता है ना, तो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना बोर्डिंग लॉजिंग करते हैं, लेकिन सेवा तो है ना, ना कितनी सेवा करते हैं पुलिस वाले भी। तो हम जब जाते हैं तो अभी वो लोग खुश होते हैं, कम से कम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है। तो डेनिस गई, सारा दिन सेमिनार किया, सारे कंट्री में दिखाया, फिर चार्ली गया, वो सब कहते जो भी स्पीकर आए बस दे दो हमको। अभी कौन आया था, गोपी आई वो गई, उसके पहले नेविल आया वो गया, फिर उसके पहले माइक जॉर्ज आया वो गया, जूडी रोजर, वो सुबह से लेकर रात तक उनको वो चाहिए सेमिनार। लेकिन बहुत ढंग से करना पड़ता है ताकि उनका दिल खुले। हाँ, खुलना चाहिए ना दिल, क्योंकि बहुत सारे हैं ना पुलिस वाले, और सारे देश को वो लाइव स्ट्रीम कर देते हैं, सब सुनो अच्छी तरह से। हाँ, लाइव स्ट्रीम होता है प्रोग्राम, वो तो ऑर्गेनाइज होता है इंग्लिश में होता है, और लाइव स्ट्रीम होता है, बहुत अभी जान पहचान है पुलिस वालों की हम लोगों के साथ, अच्छी सेवा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं और ज्ञान को अच्छे ढंग से समझाओ, क्यों कौन नहीं सुनेगा, सुख मिलता है, शांति मिलता है, प्यार मिलता है, बहुत कुछ मिलता है ना इस ज्ञान से, तो क्यों नहीं सुनेंगे। हालांकि हैं क्रिश्चियन कैथोलिक, लेकिन बाबा का ज्ञान तो सबके लिए है ना। तो एक तो ये पुलिस सेवा चल रही है, और दूसरा ये जब सुनामी होती है, अर्थक्वेक होता है, फ्लड्स आते हैं ना, तो वो जो लोग काम करते हैं बचाने वाले होते हैं, तो जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिस होते हैं, समाज सेवक होते हैं, वो थक जाते हैं ये काम करके, तो उनको हम कहते हैं रेस्पॉन्डर। तो सेल्फ केयर, हम अपनी केयर कैसे करें, उसके लिए अभी हमने वो बनाया है, डिजाइन किया है प्रोग्राम, तो वो हम कर रहे हैं अभी। तो अभी हुआ था कुछ दिन पहले सेल्फ केयर, तो उसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो स्पॉन्सर करते हैं ये प्रोग्राम, क्योंकि सभी को तैयार रहना है ना, कभी भी आ सकता है ना, अर्थक्विक भी होगा, डिजास्टर भी होगा, कुछ भी होगा। तो हम अपने मन की स्थिति को कैसा अच्छा रखें, शरीर ठीक कैसे रखें और सेवा भी करें, तो बहुत कुछ होता है ना जब ये चीजें होती हैं। एक बहन थी हमारी बीके, वो तो बेचारी कहती है मेरे को तो अभी बाबा की मुरली समझ आई, जब सुनामी आया वहां पर फिलिपिन में, उसका सारा कॉलेज भी चला गया, डूब गया कॉलेज, बड़ी बिल्डिंग, उनका घर में पानी आ गया, पानी इतना आया कि वो सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए तैरना पड़ा उसको, हैं? जब वो तैर रही थी तो सांप भी था, हैं? कार भी वहां थी उसकी खड़ी थी, पानी है ना, समुद्र का पानी है, हैं? कहती है रजनी बेन मैं तो कहा बाबा अभी मुरली समझ आ रही। कई बार हम लोग रियली, मैं कहती हूँ आपको, मुरली जो बाबा रोज कह रहे हैं ना डिस्ट्रक्शन की बात, हम लोग सुन लेते हैं ना, विनाश आएगा विनाश आएगा, जब प्रैक्टिकल बीतती है तब पता चलता है बाबा बात क्या कर रहे हैं। कहती है मेरे को तो तब समझ आया ये तो मुरली रियल चीज है। मैंने कहा तो क्या है, भक्ति थोड़ी है ये, है ना, भक्ति में तो पूजा करके आ गई, ये तो बाबा सारा बता रहा है प्रैक्टिकल क्या हो सकता है क्या होने वाला है, बाबा ने तो देखा था ना, ब्रह्मा बाबा ने भी विजन, तो उस बहन का तो सारा चला गया था ना, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा था, खत्म, धन दौलत ये सब शान शौकत एक दिन में ही खत्म है, एकदम बैगर हो गए ना। तो फिर वहां से उसको जिंदगी अपनी उठानी है, अभी मेहनत करती है उठाती है ना। तो मेरा कहने का भाव ये है कि मुरली बाबा की जब हम सुन रहे हैं वो क्या है, रियल टचिंग वाली मुरली होती है। हम लोग सुन के चले जाते हैं, लेकिन आप यदि एक एक बात देखेंगे तो वो बाबा वही बता रहा है कि हमारे जीवन में भी कभी कुछ हो सकता है, समझा इस बात को। तो ये उस समय हम लोग जो वो होते हैं ना सेवा करने वाले, उनको अपनी केयर कैसे करनी है उसके डिजाइन बना दिए हमने प्रोग्राम में। तो वो जो कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो लोग जो हैं अपने लोगों को तैयार करना चाहते हैं, तो वो फिर ब्रह्मा कुमारी उनको अभी दे रही है ट्रेनिंग, समझे, ये बहुत बड़ी चीज अभी तैयार हुई है कि इसको कहते हैं मॉड्यूल्स। सो कल परसों तैयार हो गए जो, क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं उनको समझाना पड़ेगा ना प्रॉपरली कैसे कैसे करना है, वो हमारी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर प्रोफेशनल्स है ना, उन्होंने किया है। तो तीन प्रकार के हैं, एक जर्नलिस्ट है उसने किया, एक मार्केटिंग ऑफिसर है उसने किया, तीसरी है ट्रेनर, लेकिन है तीनों बीकेस, लेकिन जो जर्नलिस्ट है वो उसने राइटर भी है, जर्नलिस्ट भी है और बीके भी है। तो उसका मैंने दो हफ्ते पहले अटेंड किया, अच्छा था। अभी कल एक और तैयार हुआ है, और एक और बहन ने तैयार किया, उसका भी बहुत अच्छा है। फिर तीसरी ने तैयार किया, उसका बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी कंटेंट है, मजा आ जाए जैसे सुन के, खुले दिल मन भी खुले बुद्धि भी खुले। तो अभी ये वाली सेवा चालू हो रही है। हाँ, अभी तो ये क्या है कि हम लोग जाते रहते हैं वहां पर, अभी तो बन गया, अभी तो पता ही नहीं चलता वहां कुछ हुआ था। हाँ, लेकिन नहीं था उस समय भी, सब बन गया था। ये देश के लोग बना तो फटाफट देते हैं, फटाफट ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि ये तो जान लग जाए तो ये तो मतलब शुरू करते हैं काम पूरा करते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के आ जाते हैं, है ना। ये देश की है तो खूबी, मतलब ये इतनी बड़ी सुनामी आई, न्यूक्लियर वो हुआ, कमाल है, फिर ठीक कर दिया इन्होंने, है ना। अभी तो ये लोग सुनामी में इतनी रिसर्च करके, अपना एक भाई है ना ली भाई, वो तो PhD कर रहा है ना सुनामी में, मतलब लोग रिसर्च करते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी ज्ञान वहां पर धर्म के हिसाब से तो नहीं सुना सकते ना, प्रैक्टिकल इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो लोग समझना चाहते हैं ना ये बातें। तो अपना एक भाई नहीं है ऑस्ट्रेलियन, वो PhD कर रहा है ना इसमें सुनामी में, हाँ ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी से, तो वो हर साल आता है दो बार उसी जगह पर जहां सुनामी आई थी, है ना। तो वहां के सभी जो डॉक्टर्स हैं नर्सेस हैं वो इंटरव्यू लेने, उनसे पूछने, वो लोग इनसे इंटरव्यू लेंगे, पीएचडी उस डिग्री मिलेगी ना सुनामी में, लोग मतलब सेवा करने के लिए ये चीजें चाहिए, हाँ एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, स्किल्स चाहिए, मतलब वो देश ऐसे ही बने हुए हैं ना, तो ऐसे सीधा ज्ञान नहीं सुना सकते, एक्सपर्टी होगी तो सुनेंगे लोग, है ना। तो अभी अपने बीके भी तो वो करते जा रहे हैं ना, एक्सपर्टीज को यू नो रिफाइन करते जा रहे हैं, तो वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितने साल से ही बन रहा है वो पीएचडी इन सुनामी। तो अभी जापान जैसे देश में हमने सुना कि जब पहले सुनामी आई थी 2011 में, ये लोग मार खा गए थे क्योंकि आधा घंटा पहले ही पता चला था इनको, और अर्थक्वेक में तो ये माहिर हैं, सारे घर रोलर पर बने हुए हैं, गिरेंगे नहीं। हाँ तो इन्होंने रिसर्च करके हर एक चीज, एक्सपर्ट हैं अर्थक्वेक में, इवन हम लोग भी सेंटर पर सब सामान तैयार रखा है, अर्थक्वेक को क्या क्या करना है, सब पेपर लगे हुए हैं, सब घर कमरे खुले रहने चाहिए, टॉर्च रखनी चाहिए, सब लिस्टें आती रहती हैं अखबार में, तो सब होशियार हैं। मैंने को एक स्कूल की टीचर बता रही थी, इंडियन टोक्यो में की थी, रश्मि मैं टीचर हूं, और पहले दिन हम स्कूल खोलते हैं, पहले तीन दिन हम लोगों को अर्थक्वेक की प्रैक्टिस करनी होती है, एक बैकपैक होता है वो तैयार करना होता है, सबका देखना होता है, बच्चों का, टीचर्स का, फिर एक कमरा बना हुआ है जो आर्टिफिशियल अर्थक्वेक एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं उसको, उसमें वो खड़ा कर देते हैं बच्चों को, वो कैसे होगा, आपको कहाँ करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हाँ बहुत वो तो एक्सपर्ट है अभी, वो लोग तो नहीं डरते अभी अर्थक्वेक से, किसमें डर, मार खा गए थे सुनामी में, तो सुनामी में भी अभी हमने सुना काफी इन्होंने रिसर्च करके कि कैसे पता चल जाए पहले, वो वाली स्टडी कर रहे हैं समुद्र के बारे में, जो पांच तत्व हैं यू नो। तो अभी अपना भाई भी तो एक्सपर्ट हो रहा है ना एक, क्योंकि सेवा कैसे करेगा नहीं तो एक्सपर्ट बनना पड़ता है आजकल इस दुनिया में, सेवा करने के लिए वो वाली स्किल चाहिए ना, लोगों को क्लिक होना चाहिए कि ऐसे थोड़ी हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इससे फायदा है। तो अभी फिलिपिन वालों ने ये तैयारी की, सेल्फ केयर मॉड्यूल्स उन्होंने बना दिए, तो कितने लोगों को फायदा हो रहा है, कंपनीज की कंपनी सभी इनवाइट करती हैं, क्योंकि उन लोगों को तैयार करना है ना, लोगों को आगे मदद करने के लिए। और तीसरा हम लोग जा रहे हैं मेंटल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ तो उसमें है कि एक है स्पिरिचुअल राजयोग, स्पिरिचुअलिटी, और दूसरा है साइकोलॉजी, और तीसरा है मेंटल हेल्थ। ये सारी स्टडी के 25 डॉक्टर्स आए थे इकट्ठे मिलकर के ब्रह्मा कुमारी रिट्रीट सेंटर दो हफ्ते पहले, तो उनको कंपैशन समझाया, सेल्फ कंपैशन, अच्छे अच्छे टॉपिक्स, वो भी खुल के गए, अच्छे खुल के गए, और अच्छी सेवा उनसे भी हो रही है, तो मतलब प्रोफेशनल बहुत है वहां पर ये सेवा करने के लिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे ना, नहीं तो यदि ये स्किल चाहिए आजकल समाज में रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो बीकेस जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं वो अपनी रिफाइननेस करते जा रहे हैं प्रोफेशनल के होने के नाते। इंडिया में भी कितना बढ़ गया देखो अभी, यूथ सेवा ये वो है ना, लेकिन इनको भी तो कई लोग मिलेंगे ना, कोई मेंटल हेल्थ वाले मिलेंगे, कोई डिप्रेस मिलेंगे, फिर उनको कैसे संभालना होता है, क्या करना होता है, फिर इसमें एक्सपर्टीज चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको आइडिया आता हो, स्टडी किया हुआ हो, रिसर्च की हुई हो, तो मदद कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो क्या क्या हो रहा है दुनिया में, कैसे कैसे कर्मों के हिसाब किताब निकल रहे हैं ना, तो इसलिए वो फिर कर्मों का हिसाब किताब भी अलग है, लेकिन सेवा में भी कर्म का हिसाब किताब ना देख करके थोड़ी लौकिक स्टडी भी तो मदद करती है ना लोगों को। तो इस प्रकार से प्रोफेशनल सेवा आजकल खूब हो रही है इन देशों में, आगे बढ़ते जा रहे हैं, नहीं तो बैठे रहेंगे जैसे बाबा ने नहीं, एक बार रमेश भाई ने कहा था मैगजीन में कि ब्रह्मा कुमारी से आगे बढ़ना है तो नई नई योजनाएं बनानी पड़ेंगी, नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, नहीं तो ना बैठे रहेंगे, पहले ही स्टाइल लेकर के नहीं चलेगा, है ना। पहले जमाने में आप देखेंगे दुकानें बनती थी ना, ये मैंने देखा पहले पहले वो सुपरमार्केट इतनी बड़ी नहीं होती थी जहां सब दुकानें हो, हैं, और आजकल एक ही मॉल में सब कुछ है। कारण है जापान जैसे देश में आप ट्रेन से उतरो वहां खाना भी खा लो, बैंक का काम भी कर लो, वहां हॉस्पिटल है चीजें भी ले लो, सब्जियां भी ले लो, चलो ट्रेन में चढ़ जाओ घर वापस जाओ, हैं इधर उधर भटकने की हाँ तो लोग कितना स्टडी करके लोगों को सुविधा देंगे ना, तो आगे तभी तो उनके वो दुकानें चलेंगी। यदि दुकान बहुत दूर हो और ट्रेन से उतरो, वो कौन जाएगा जी लेने, हैं? तो ऐसे आजकल नई नई डेवलपमेंट होती है ना, तो धन आएगा, आगे बढ़ेंगे वो लोग, इस प्रकार से करते हैं ना न्यू डेवलपमेंट। तो अपने ज्ञान में भी बहुत डेवलपमेंट। तो अभी आप यहाँ सेवा करते हैं तो आप सोचो नए नए ढंग से, है ना, बाबा की दृष्टि से हम कैसे वाइब्रेशन लेते हैं और देते हैं, हैं? ये आपकी सेवा में दृष्टि और स्माइल चाहिए, है ना, जो कर्म करते हुए भी हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को मिले, क्योंकि आप लोग भी तो इंटरनेशनल लोगों की सेवा करते हैं ना, कई प्रकार के आते हैं ना लोग यहाँ पर, तो वो क्या देखेंगे हमारे में, फेस फेस हाँ और वाइब्रेशंस दृष्टि, तो वो लोग पिकअप करते हैं, है ना, कि हमारे मन की जो विचार हैं, हमारी दृष्टि कैसी है, वृत्ति कैसी है, वाइब्रेशन कैसे हैं, हम कैसे कर्म कर रहे हैं सुचारू रूप से। ये अंग्रेज लोग ये सब देखते हैं, हाँ ये लोग भोले नहीं होते बहुत होशियार, हाँ पिकअप कर लेते हैं, थोड़ा सा भी वाइब्रेशन डिस्टर्ब वाला होगा इनको पता चल जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारी यहाँ की सेवा है प्योरिटी, पवित्रता, हाँ जितना हमारे मन के वाइब्रेशन पवित्र होंगे उनको सुख मिलेगा, क्योंकि ये चीज बाहर के देशों में नहीं है, है ना। तो यहाँ के देशों अपने भारत में बाबा के घर में है पवित्रता, बाबा ने कहा ना महान चीज है, हाँ तो हमारे वाइब्रेशन भी पवित्र और बोल भी और वृत्ति भी, तो इससे जो प्रकंपन फैलेंगे वातावरण में उससे हमारी सेवा होगी। ओम शांति।